الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. आज मैं आपको छोटे छोटे ऐसे कुछ काम बताना चाहती हूँ कि जो करने में बहुत आसान है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी बशारत दी है उनके बारे में कि जो ये करेगा तो वो सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगा, यानी आसानी के साथ अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। और वो काम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, नंबर वन, सलाम को आम करो। यानी आप जिस मुसलमान से भी मिलें, आप उसको जानते हैं या नहीं जानते, सिर्फ इसलिए सलाम करें कि सलाम करने से एक तो नेकियां मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम आप कहते हैं, 10 नेकियां मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्ला कहते हैं, 20 नेकियां मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहते हैं, आपको मुफ्त की 30 नेकियां मिल रही हैं। देखिए, जो इंसान हिर्स रखता है ना, लालच रखता है नेकी का, वो ज़रूर ये करेगा। हम पैसों का लालच रखते हैं ना, तो हम हर जगह से सोचते हैं यहाँ से इतने पैसे बन जाएंगे, वहाँ से इतने बन जाएंगे, उनको जोड़ते रहते हैं। नेकियाँ पैसों से भी ज़्यादा कीमती चीज़ है। उनके लिए कोशिश करें कि देखो, छोटी सी चीज से मुझे कितना फायदा मिल सकता है। एक सलाम कहने से कौन सी जुबान थकती है या कौन सी एफर्ट लगती है? सिर्फ ये है कि अपने तकब्बुर को तोड़ना पड़ता है, अपनी बड़ाई के एहसास को तोड़ना पड़ता है। लोगों के लिए यही बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं सलाम करूं, ये कर लेना मुझे सलाम, जिसने पहल की उसका अजर ज्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के यहाँ सबसे बरतर वो है जो सलाम में पहल करे, ऊपर है वो उससे जो बाद में करे उससे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक ईमानदार ना हो जाओ, और तुम ईमानदार नहीं हो सकते जब तक एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। यानी ये भी ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें। क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बनाऊँ जिसको करने से आपस में मोहब्बत करने लगो? यानी एक नुस्खा बता दिया कि जिससे आपस में मोहब्बत हो जाए, क्योंकि मोहब्बत के बगैर जन्नत में नहीं जा सकते। तो फरमाया, बाहम सलाम करना, इसको आम करो। यानी आप देखें ना, आप मसलन आप मस्जिद गए, आप किसी को नहीं भी जानते, आप उसको सलाम करते हैं तो आपको उसके साथ एक ताल्लुक बन जाता है। सेकेंड टाइम सलाम करेंगे, फिर वो आपको पहचानने लगेगा। थर्ड टाइम सलाम करेंगे, कुछ आगे भी बातचीत शुरू होगी। तो सलाम में बड़ी खैर है। तो पहली चीज बताई, अफशो सलाम बैनकुम, सलाम को आम करो। फिर दूसरा, ताम खिलाओ, खाना खिलाओ। खाना खिलाना भी बहुत बड़ी नेकी है। खाना खिलाना किसको? हम अपने जानने वालों को खाना खिलाते हैं, अपने दोस्त अहबाब को खाना खिलाते हैं। कभी ऐसा भी किया करें कि आम लोगों को खाना खिलाएं, कहीं देख दे दें, कहीं किसी जगह पे खाना भिजवा दें। आपके घर में बाज़ दफ़ा बहुत सारा खाना पक जाता है, उसके बाद फ्रिज में रख रख के वो ख़राब होता है, तो किसी और को खाना खिला दें, अपने खाने में किसी को शरीक कर लें, या मंथली की कुछ लोगों का राशन लगा दें कि फलां को इतना राशन मंथली दिया जाए। कुछ ऐसा इंतज़ाम कर लें, आपके घर से लोग आके राशन ले जाया करें पूरे महीने का, उसमें कोई आटा दाल चावल इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो यानी अपना दस्तरखान आप खुला करें, खाने में दूसरों को शरीक करें। हमारे घर में खाने पड़े पड़े बासी हो जाते हैं, फिर हम उनको फेंकते हैं, लेकिन किसी को देते नहीं हैं। हालांकि किसी और को अपने खाने में शामिल कर लेना कितनी बड़ी नेकी है कि सलामती से जन्नत में जा सकते हैं। और इसमें यहाँ पे ये नहीं कहा गया इस हदीस में सिर्फ मिस्कीन को खिलाओ। अब हम कहें हमारे तो यहाँ पे कोई हमें मिलता ही नहीं गरीब, इसलिए हम किसको खिलाएं? किसी को भी खिलाओ, मगर खाना खिलाओ। आपने कोई चीज़ बनाई है, थोड़ी सी अपने हमसाए में भेज दें। इससे भी आप अपने खाने में किसी को शरीक कर सकते हैं। और इस तरह अगर आप मंथली लगा लेते हैं तो बहुत सारे लोग हैं इस वक्त दुनिया में जिनके लिए बार बार अपीलें आती हैं कि इनके पास साफ पीने का पानी तक नहीं है, खाना तो दूर की बात है। और हम अपने घरों में 3-4 डिशेस बना के बैठ जाते हैं, तो अपने खाने में दूसरों को शामिल करेंगे तो सलामती से जा सकेंगे जन्नत में। किसी की भूख का एहसास करना बहुत बड़ी नेकी है, कि जैसे मेरे साथ पेट लगा हुआ है किसी और को भी भूख लगती है। और रोज़ फलस्तीन के लिए अपीलें आती हैं कि वहाँ पे लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। यमन के लिए आती है कि वहाँ पे बदतरीन कहत की सूरत हाल है। हमारे अपने मुल्कों में भी लोग गरीब बहुत सारे हैं, तो खाना खिलाने को आम करें। सिर्फ उस वक्त मत पूछा करें कि ज़कात के पैसों से हम खाना खिला दें, ये मत कहा करें, क्योंकि ज़कात अलग चीज़ है। आप वैसे ही खाना खिलाएं और सारा साल खाना खिलाएं। ये काम सिर्फ रमज़ान में करने के नहीं है, मगर रमज़ान में चूंकि नेकी की तरफ दिल मायल होते हैं, चलो एक शुरुआत नेकी की कर दी जाए। सोचें हम कहाँ पे खाना दे सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में ख़ास तौर पे कोई बेवा है या कोई यतीम है, ख़ास तौर पे अगर उनका राशन आप लगा देते हैं कि चलो मंथली इनको यहाँ से फलां, मिसाल के तौर पे किसी की आपने ड्यूटी लगा दी कि ये राशन आपने बांटा करना, या किसी को पैसे भिजवा दें, आप पैसे नहीं देना चाहते, आप पैसे भिजवा दें किसी जानने वाले को और ये कह सकते हैं कि मंथली फलां लोगों आके इसके घर से अपना राशन ले जाया करें। क्योंकि अगला काम ही क्या है, सिला रहमी। अगर सिला रहमी इस तरह से कर दी जाए कि उनको खाना भी खिला रहे हैं, सिला रहमी भी हो रही है, रिश्तेदार भी हैं और खाना भी खिला रहे हैं, तो डबल अजर हो गया। रिश्तेदार हैं और उनको खाना भी खिलाएं। और फिर ये भी ज़रूरी नहीं कि कोई गरीब, अगर आपके ख़ानदान में कोई है ही नहीं तो आपने किसी और को तो खाना खिलाना ही नहीं, आप हम क्या करें। नहीं, अपने ख़ानदान के और लोगों को खाना भी खिलाएं, उनकी हाल अहवाल पूछें। जब आप खाना खिलाते हैं ना, तो दरअसल खाना खिलाना एक ऐसी नेकी है और ऐसी एक ताल्लुकदारी है कि जब आप किसी को खाना खिलाते हैं उससे आप गरीब हो जाते हैं। इसीलिए ये दुआ भी है ना, तुम्हारे दस्तरखान पे नेक लोग खाना खाएं। क्योंकि जब आप मिलके खाना खाते हैं ना तो एक क्लोजनेस होती है, इसीलिए फैमिलीज को कहा जाता है कि आप मिलके खाना खाएं, एक वक्त में खाना खाएं सारे, ताकि बरकत हो। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के रमज़ान से हमें ये भी मिल जाता है, वरना फैमिली के अक्सर लोग अपने अपने टाइम पे खाना खा रहे होते हैं, लेकिन रमज़ान की वजह से ऐसी बरकत होती है कि सहर और अफ्तार में दोनों टाइम पे सारी फैमिली इकट्ठी होती है, एक वक्त में खाना खाती है। तो ये खाना अगर रिश्तेदारों को खिलाएंगे तो खाना खिलाने का भी अजर हो गया और सिला रहमी भी हो गई साथ। लेकिन इसके अलावा औरों को भी खाना खिलाएं। और सिला रहमी में सिर्फ खाना खिलाना नहीं, उनका हयाल अहवाल पूछते रहना, उनके कोई दुख सुख है उसके अंदर काम आ जाना, उनको कोई चीज़ की ज़रूरत है तो अपने आप को आगे पेश करना, इस नीयत से सिर्फ कि ये सिला रहमी मैंने करनी है, इससे नहीं कि कल को ये भी हमारे कोई काम आ जाएंगे, कल को इनको मुझे कोई ज़रूरत होगी तो मैं इनको कह सकूंगी, फिर ये मेरे सामने ज़रा झुक के रहें, फिर ये मेरा शुक्रिया अदा करें, इसके लिए नहीं। या जब मुझे कोई छोटे मोटे काम होंगे तो इनको बुला लिया करूंगी, आके मेरे घर के काम कर दें, हमें भी तो ज़रूरत होती है, इसके लिए नहीं। सिला रहमी सिर्फ इसके लिए कि अल्लाह मुझे जन्नत में सलामती के साथ भेजना। जब आप ऐसे काम किया करें ना, और ये इन को अहादीस को याद रखें, और फिर जब ये काम करने लगें तो फिर अपने आप को याद कराने के लिए ये बात दोहराया करें कि अल्लाह मुझे जन्नत में सलामती के साथ भेज देना, क्योंकि तेरे नबी ने फरमाया कि वो लोग जो सिला रहमी करते हैं वो सलामती से जा सकते हैं, वो लोग जो खाना खिलाते हैं वो सलामती से जा सकते हैं, वो लोग जो सलाम करते हैं वो सलामती से जा सकते हैं। और फिर चौथी चीज़, जब लोग सो रहे हों तो नमाज पढ़ें। और बड़ी अच्छी हमारी प्रैक्टिस इस वक्त होती है कि ख़ास तौर पे जब सहरी के लिए ख़वातीन तो ज़्यादातर उठती हैं पहले से, तो उससे भी थोड़ा पहले उठ जाएं, चाहे आपने तरावी पढ़ी भी है, फिर भी जिस वक्त लोग सो रहे हैं, ख़ास तौर पे इस हदीस के अंदर क्या है कि वसल्लु वन्नासि नियाम, सलात नमाज उस वक्त पढ़ो पढ़ें वो लोग जब लोग दूसरे सो रहे हो, तो तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। चार काम है और चार आसान से काम है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं, बस ये है कि बाज दफा हम खाना खिला भी रहे होते हैं लेकिन नियत ये नहीं होती। सलाम करते भी हैं तो उसको करते हैं जहां से हमें कुछ फायदा हो, या जो हमारे जानने वाला हो, या हमारा बड़ा बेस्टी हो, तो हम उसके साथ सलाम दुआ तो बड़ी खुशी से करते हैं, बाकी किसी मुसलमान के साथ नहीं करने की जरूरत है। सलाम को एक बस रिचुअल समझते हैं कि चलो बात का आगाज करना है तो सलाम कर लिया, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये सलाम भी जो है मुझे जन्नत में ले जाने का सबब बन सकता है। और फिर खाना भी खिलाते होंगे यकीनन आप, लेकिन वो दावतें करना कि जिसके अंदर ये नियत है कि हमने कर ली ना, अब ये कब हमें बुलाएंगे, हमने तो इतनी दफा बुला लिया, इन्होंने अभी तक नहीं बुलाया, तो वो नहीं फिर। और इसी तरह तीसरी चीज़ सिला रहमी भी, इसलिए कि मैं जन्नत में चली जाऊँ और सलामती के साथ चली जाऊँ। तो ये बड़ा बड़े नफे वाले काम है, इनमें अगर आपको थोड़ी सी मुश्किल भी उठानी पड़ती है तो कोई नहीं, ये जो मुश्किलें हम उठाते हैं ना, ये कोई भी नेकियां करने में किसी चीज में भी, सिर्फ इनमें नहीं आजकल, बल्कि और आप कुरान पढ़ रहे हैं उसमें भी थकन हो जाती है, आप तरावी पढ़ रहे हैं उसमें आप खड़े रहते हैं उसमें थकन हो जाती है, या आप और कोई नेकी के काम कर रहे हैं तो उसके अंदर एक तो रोजा, फिर उसके साथ ये काम करने, तो थकन होती है। लेकिन याद रखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को जो भी कोई थकन है, कोई दुख पहुंचे, कोई गम आए, कोई मुसीबत आए, हत्ता कि कांटा भी जो उसके पाँव में चुभता है, अल्लाह ताला उसके बदले में भी उसके गुनाहों को माफ कर देता है। यानी ये जो थकन भी हमें हो गई ना, इससे भी हमारे गुनाह बख्शे जा रहे हैं। आपको थकावट हो जाती होगी, मैं ही क्यों इफ्तारी बनाऊं, मैं ही सहरी के लिए उठती हूँ, कोई एहसान ना जताएं, ये भी सिला रहमी है। आप बच्चों के लिए बनाती हैं, ये खामिंद के लिए, घर वालों और घर वालों के लिए सिला रहमी है, रिश्तेदार हैं आपके, आप उनके लिए बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहें कि अल्लाह ताला ने मुझे करने वाला बनाया, लेने वाला नहीं बनाया। ऊपर वाला हाथ हमेशा नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है, तो आप एक बेहतरी की पोजिशन में, ना कि आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होते, उससे बेहतर है आप लोगों को करके देने वाले, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर शुक्र अदा करना चाहिए। और जो भी इंसान को मुश्किल आती है कोई भी काम करने में, किसी तरह चाहे नेकी का काम कर रहा है या वो वैसे अपने कोई काम कर रहा है, उसमें जो उसको थकन भी हो जाती है मोमिन को, उसके ऊपर भी उसके गुनाह झड़ते हैं, उसके दर्जे बुलंद होते हैं। इवन कोई आजमाइशें आती हैं, कोई भी आजमाइश इंसान की उसमें आ जाए, उसकी यानी उसकी औलाद के अंदर आ जाए, अल्लाह ना करे उसके जिस्म में आ जाए, अल्लाह ना करे कोई बीमारी आ जाए, उसके माल में अल्लाह ना करे कोई आ जाए, लेकिन कोई भी वो आजमाइश आ सकती है। अब वो आजमाइश जब मोमिन मर्द या मोमिन औरत को आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चाहे उसके जिस्म में आए, चाहे माल में आए, चाहे औलाद में आए, हमेशा किसी ना किसी चीज़ में आती रहती है। यहाँ तक कि जब वो अल्लाह ताला से मुलाकात करता है तो उसके ऊपर एक गुनाह भी नहीं होता, क्योंकि उसके गुनाह दुनिया में आजमाइशों से धुलते रहते हैं। बल्कि बाज असलाफ फरमाते हैं कि अगर हमारे ऊपर आजमाइशें ना आए, अब हमारे पर कोई भी परेशानी कोई मसला ना आए, तो फिर हम आखरत में कैसे निजात पाएंगे, क्योंकि ये तो हमारी क्लींजिंग है कि आप क्लींजिंग करते हैं ना, स्किन को क्लींज करते हैं या अपने घर को साफ सुथरे करते हैं, तो ये क्लींजिंग का एक तरीका है कि अल्लाह ताला चीज छोटे मोटी चीज़ें अप एंड डाउन जिंदगी के आते रहते हैं, कोई मसाइल आते हैं, इंसान फिर अल्लाह की तरफ रुजू करता है, फिर उसको कोई परेशानी होती है, फिर वो अल्लाह ताला की तरफ बढ़ता है, फिर दुआएं करता है, फिर सज्दे करता है, फिर रातों को उठता है, फिर इसी तरह जो उसको एंग्जाइटी हो रही होती है क्या होगा क्या होगा आगे, उसे भी उसके गुनाह झड़ रहे होते हैं, फिर उसको कोई जो भी परेशानी आ रही है, उसकी नींदें हराम हो रही हैं, वो उठता है तो वो उससे भी उसके गुनाह झड़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैं जब अपने किसी मोमिन बंदे को आजमाइश में मुब्तला करूं, फिर वो इस आजमाइश में भी मेरी तारीफ करे कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र, हमने कैसे तारीफ सीखी थी, अल्हम्दुलिल्लाह ही अला कुल्ली हाल, कोई मुश्किल भी आए तो वो उस रात नींद से इस तरह बेदार होगा गोया उसकी माँ ने उसे आज ही जना है। यानी किसी को आजमाइश आती है, वो आजमाइशों में मुब्तला होता है, तो वो फिर अल्लाह ताला उसको ऐसे कर देता है कि जैसे कभी इसने कोई गुनाह ही ना किया, इस तरह उसको पाक साफ कर देता है जैसे आज पैदा हुआ बच्चा। इतना अल्लाह ताला उस की आजमाइशों की वजह से उसको साफ करता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है अपने फरिश्तों से, मैंने अपने बंदे को आजमाइशों में जकड़ा है, तुम इसके लिए वैसे ही अजर व सवाब लिखो जिस तरह तुम उसकी हालत सेहत में लिखते थे। यानी अगर बीमारी की वजह से वो आजमाइश में मुबतला हुआ तो जैसे वो सेहत के दिनों में अमल करता था वैसे ही उसके लिए अमल लिखा जाता है। अगर बीमारी या आजमाइश की वजह से कोई नेकी के काम नहीं कर पाता, कोई मसलन रोज़ा नहीं रख पा रहा, कोई तहज्जुद के लिए नहीं खड़ा हो पा रहा, तरावी के लिए नहीं जा पा रहा, तो अल्लाह ताला की ज़ात इतनी शफीक और मेहरबान है कि अल्लाह ताला उसके लिए वही अजर लिखने के लिए फरिश्तों को हुक्म देता है कि अगर ये सेहतमंद होता तो इसने यही काम करना था ना, तो इसलिए इसके लिए ये लिखो। तो इंसान जब सब्र करता है, गिला शिकवा नहीं करता, अल्लाह ताला की तारीफें करता है, तो अल्लाह ताला इस तरह उसको पाक साफ भी करता है और उसका अजर भी लिखा जाता है। और फिर वैसे भी इंसान के गुनाह ऐसे झड़ते हैं, वो खास तौर पे बीमारी आ जाए कोई तो ऐसे गुनाह झड़ते हैं जैसे दरख्त से पत्ते झड़ते हैं। तो सर में दर्द भी इवन हो जाए, बाज लोग इस घबराहट में सर में दर्द ना हो जाए इसकी वजह से रोजा ही नहीं रखते, हालांकि सर में दर्द भी हो गया तो उससे भी हमें पता चलता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन को होने वाला सर दर्द या लगने वाला कांटा या कोई भी चीज उसके लिए जो भी उसको तकलीफ देती है, हर तकलीफ के बदले में अल्लाह ताला रोजे कयामत उसका एक दर्जा बुलंद करेगा और उसके गुनाहों को मिटा देगा। सुभान अल्लाह, ये सिर्फ मोमिन के साथ है और किसी के साथ ऐसा नहीं होता। तो कोई भी तकलीफें हैं फौरन घबरा ना जाया करे, वो सोचे कि अल्लाह ताला इसमें भी मेरे गुनाहों को झाड़ रहा है, अल्लाह ताला इसमें भी मेरे लिए नेकियां लिखी जा रही हैं, अल्लाह इसके अंदर भी मेरे दर्जे बुलंद हो रहे हैं। तो इंसान बहुत कुछ इन आजमाइशों और इन तकलीफों से बहुत कुछ पाता है, बड़े लेसन्स उसको मिलते हैं, बड़ा अल्लाह ताला का कुर्ब मिल जाता है, बड़ी वो दुआएं करता है, वो उस दुआओं से भी उसको अजर मिलता है, फिर इसी तरह इंसान के गुनाह भी धुलते हैं और आखरत में भी उसके लिए आसानियां हो जाएंगी। तो अल्लाह ताला हमें किसी आजमाइश में ना डाले, लेकिन कोई छोटी मोटी कभी तकलीफें आ भी जाएं तो हमें अल्लाह ताला सब्र करने वाला रखे और अल्लाह ताला हमें ऐसे ही बख्श दे बगैर किसी आजमाइश में डाले हुए। आज अल्लाह ताला का जो इसम मुबारक हम देखने वाले हैं वो इतना प्यारा है कि जो इसे इसको समझ लेगा ना, उसकी डिप्रेशन खत्म, उसकी टेंशन खत्म, और वो बिल्कुल यानी अपने आप को बहुत ताकतवर समझेगा, उसको अपने आप बड़ा कुव्वत वाला महसूस होगा। अगर आपने इस नाम को समझ के और इसके ऊपर वैसे ईमान लाना है जैसे कि ईमान लाने का हक है, तो आपको ये नाम बहुत कुव्वत देगा, आपके दिल को थामेगा, आपको वैसे भी आपको स्ट्रेंथ महसूस होगी। और ये अल्लाह ताला का नाम है अलकवी और दूसरा नाम अलमतीन, बड़ी ताकत वाला और शदीद कुव्वत वाला। मतीन भी शदीद शिद्दत है उसमें, मजबूत कुव्वत वाला, वो जात जो तमाम चीजों पर कुदरत रखने वाली हो उसको कहते हैं अल कवी और अल मतीन। अल कवी वो जात है जिसको तमाम चीजों के ऊपर कुव्वत हासिल हो। इन्नल्लाह कवीउन शदीदुल इक़ाब, अल्लाह ताला कवी है शदीदुल इक़ाब है, यानी वो सख्त सजा देने वाला कुव्वत वाला है। यानी दुनिया के जो लोग हैं जब इनको कोई किसी को पकड़ना होता है तो कितनी किसी को सजा देनी हो मुजरिम को, कितनी इनकी स्ट्रेंथ लगती है, कितनी पुलिस, कितने डिटेक्टिव्स, कितनी आगे पीछे सीक्रेट सर्विसेज कहाँ कहाँ से जाके उसको पकड़ने के लिए कोशिशें करते हैं, कभी वो दूसरे मुल्कों में जाके छुप जाते हैं, इन पकड़े नहीं जाते। लेकिन अल्लाह ताला की जात वो है जो कवी है, कभी कोई ये ना समझे कि वो सजा नहीं दे सकता, कोई जाके छुप जाएगा, कोई जाके इधर उधर हो जाएगा, कोई कहीं पनाह ले लेगा, नहीं, वो कुव्वत वाला है। इसलिए उसकी सजाओं से डरना चाहिए कि वो शदीदुल इकाब तो है, कोई कानून बहुत सख्त हो सकता है बहुत सख्त कानून, कहते ये फलान जगह का कानून बड़ा सख्त है, लेकिन कानून की सख्ती का फायदा तभी है जब वो कानून इतनी पावर भी रखता हो कि वो किसी को पकड़ सके, अगर वो पकड़ ही ना सके तो फायदा क्या। अल्लाह ताला शदीदुल इक़ाब भी है, लेकिन साथ वो कुव्वत वाला भी है, उससे कोई बच के नहीं जा सकता, कोई भाग नहीं सकता उसकी पकड़ से। तो मुजरिम डर जाए, और मजलूम और जो जैसे मासूम है उसके लिए कितनी बड़ी इसके अंदर तसल्ली है। इसीलिए मैंने आपको कहा ना कि आप ये देखें, अगर आप जालिम नहीं है ना तो आपकी टेंशन दूर हो गई, कि कोई आपके ऊपर जुल्म करता कहाँ भागेगा, अल्लाह ताला कवी है। आपकी जो फिकरात है, कोई तो फिक्रें होंगी ना, कोई परेशानियां होंगी, उन सारी परेशानियों के आगे वो कमजोर हैं, अल्लाह ताला अलकवी है। अलकवी वो है जिसकी पावर जो है ना अनलिमिटेड है, इतनी अनलिमिटेड पावर का मालिक, अलमतीन वो जो अल्टीमेट पावर वाला, अल्टीमेट बहुत ज्यादा पावर, बेतहाशा कुव्वत, और अलकवी जो अनलिमिटेड है, यानी लिमिट नहीं है, कोई महदूद नहीं है कि इतनी बस पावर है। एक तो ज्यादा होना पावर का, एक एक बंदे की पावर बहुत ज्यादा हो सकती, लेकिन लिमिटेड है, बस इस मुल्क तक है, सारे मुल्कों तक नहीं है। और एक बंदे की पावर सारे मुल्कों तक हो सकती है, लेकिन फिर वो कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि सारे मुल्कों में कहाँ कहाँ वो घूमेगा, कहाँ कहाँ फिरेगा, अल्टीमेट नहीं है उसकी पावर। अल्लाह ताला की पावर अल्टीमेट भी है और अनलिमिटेड भी है, हर एक चीज के ऊपर है, कोई चीज उसकी कुव्वत के बाहर नहीं है कि वो कैसे ये करे। ये जैसे इंसान होता है ना, उसको होता है वो एक एक टाइम पे आके कह देता है जी ये मेरी पावर से बाहर चीज़ है, वो कितना ही बड़ा वजीर हो वो हो, फिर एक वक्त में वो कहता है, उसको कहते हैं भाई ये काम करते हैं, वो कहता नहीं जी ये मेरी पावर में नहीं हो सकेगा, बाकी आप कुछ कहें तो मैं करता हूँ। और लेकिन अल्लाह ताला के पास सारी कुव्वतें, चाहे वो इज्जत देने की है, चाहे वो सेहत देने की है, चाहे वो किसी कौम को अरूज देने की है, चाहे किसी की मदद करने की है, चाहे किसी को सजा देने की है, चाहे किसी की परेशानियां दूर करने की है, चाहे किसी को औलाद देने की, आप देखिए ना सारी कुव्वतें अल्लाह ताला की आपको नजर आती हैं। कुरान के अंदर देख लें आप, उठा के इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं या अल्लाह मैं तो इतना ज़यीफ़ हो गया हूँ, बीवी कह रही है कि मैं तो बांझ रही हूँ सारी ज़िंदगी, अल्लाह ताला ने औलाद दे दी। अय्यूब अलैहिस्सलाम इतना 18 साल वो बीमार रहे हैं, वो अब इतनी बीमारी पे तो इंसान मायूस ही हो जाता है, अब कैसे होगा ये ठीक, ये तो इतने अरसे से बीमार है, ये तो बेड रिडन हो गया। अल्लाह ताला कुव्वत वाला है, वो जिसको चाहे ठीक कर दे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं, आगे समंदर है, पीछे फिरौन का लश्कर है, लोग आगे कह रहे हैं इन्ना ला मुद्राकून, हाय हम तो पकड़े गए हैं, मूसा ये किधर ले आया हमें, वो कहता है इन्नमा या रब्बी सयहदीनी, मेरे साथ तो मेरा रब है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। अल्लाह ताला की कुव्वत है, समंदर को फाड़ के रख दिया, क्या फिरौन और उसके लश्कर तिनकों की तरह समंदर के अंदर ऐसे बह रहे थे, ऐसे डूब रहे थे कि जैसे कोई चीज ना हो, समंदर के नीचे जाके मछली बैठ गई, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के अंदर है, अल्लाह ताला की कुव्वत है, कहाँ वो मछली जाके किधर बैठ गई, अल्लाह ताला की कुव्वत है ना। और फिर जब चाह निकाल के उनको बाहर ला दिया, कौन ढूंढ के लाता यूनुस अलैहिस्सलाम को, कौन सी मछली के पेट में है, सारी दुनिया की ताकतें लगा लें कितनी मछलियां ढूंढेंगी, और कितना बड़ा समंदर है, किधर से वो मछली लेकर आए जिसमें एक आदमी बैठा हुआ, और वो भी अल्लाह की कुव्वत है वो जिंदा बैठे। और देखें वो कौमें जिन्होंने कहा, आद ने कहा कानू अशद्द कुव्वतन, वो थे अपने आप को बड़े कुव्वत वाले समझते, वो कहते थे हम बहुत कुव्वत वाले हैं, उनको अल्लाह ताला ने किस तरह से उठा उठा के पटखा, सिर्फ एक हवा भेज के, अल्लाह ताला ऐसी कुव्वत वाला है। तो जिसके पास ताकत नहीं है उसको, और उसके पीछे अल्लाह ताला की कुव्वत है ना, तो उसको बेबस ना समझो कि ये तो इसको तो जो मर्जी कर लें, इसको इसको क्या फर्क, हमें क्या फर्क पड़ेगा, ये तो कुछ बेबस सा इंसान है, कोई यतीम है, कोई बेसहारा है, कोई औरत है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, वीक है ना, उसके माँ बाप जिंदा हैं, उसके भाई कोई है नहीं, अब वो इंसान सोचता है ये कौन सा मुझे कुछ कह सकेगा, इसको दबाओ जितना दबा सकते हो। इसको ऐसे रखो, तो याद रखो एक अलकवी है, वो बहुत बड़ी ताकत रखता है। जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है ना, उससे बड़ी ताकत उसके पास है। तो इंसान घुमंड में ना आए अपनी ताकत के, बल्कि ये सोचे कि एक अलकवी ऊपर है, जुल्म करने से पहले ये सोच ले, और मजलूम ये सोच ले कि मेरे साथ अलकवी है, मजलूम की आह सुनी जाती है, अल्लाह ताला के अर्श तक पहुंचती है। तो मेरे साथ अलकवी है, मुझे किस बात का डर है। ये चीज इंसान को कितना स्ट्रांग बना देती है। और जब इंसान डरने लगे, खौफ ज़दा हो जाए किसी चीज़ से कि हाय मुझे इससे डर लगता है, कई लोग जिन्नात से डरते हैं, कई जादू से डरते हैं, कभी कोई हुकूमतों की, कई कारिंदों से डरते हैं कि फलां हाय हमें नुकसान ना पहुंचा दे। तो याद रखो, तुम उस रब के गुलाम हो जो अलकवी है, तुम उसके बंदे हो। देखिए ना, आपकी जान पहचान कोई वजीर से गवर्नर से हो जाए, अब आप तो अपनी इतने उसके अंदर रहते हैं कि भाई मैं मेरी आपको नहीं पता जी हमारे कॉन्टैक्ट्स किसके साथ हैं। ठीक है, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, इतनी आप गर्दन उठा के चलते हैं जी, आप तो कोई परवाह ही नहीं है जी, हमारे वहां पे उनके साथ ताल्लुक आते हैं, फलां जगह पे हैं, एक फोन आएगा और ये हो जाएगा काम। तो सोचें, जो अपने आप को कहता है मैं अलकवी का बंदा हूं, वो कभी रंजीदा हो सकता है, वो कभी डर सकता है किसी से, वो कभी परेशान हो सकता है। मेरे सारे प्रॉब्लम्स को वो कुव्वत रखता है कि वो चेंज करते, वो अलमतीन है, उसके पास अल्टीमेट पावर है, वो पूरी पावर रखता है कि मेरे सारे ही मसलों को हल करते। इज्जत चाहिए, उसके पास कुव्वत है तुम्हें इज्जत देने की। सेहत चाहिए, उसके पास कुव्वत है कि तुम्हें सेहत अता फरमा दे। औलाद चाहिए, उसके पास कुव्वत है तुम्हें औलाद अता फरमा दे। रिस्क चाहिए, उसके पास कुव्वत है जिसको चाहे रिस्क दे। बल्कि सूरह ज़ारियात में तो आता ही अल्लाह ताला का ये नाम इस तरह, इन्नल्लाहुवर्रज़्ज़ाकुज़ुल्कुव्वतिल्मतीन, सिर्फ यहाँ पे एक जगह मतीन का अल्लाह ताला का नाम आया सूरह ज़ारियात। बेशक अल्लाह ताला वही रिस्क देने वाला है, अर्रज़्ज़ाक है, कुव्वत वाला, मतीन, बहुत ज्यादा कुव्वत वाला है। उसके फैसले को कोई टाल नहीं सकता कि वो कोई फैसला दे दे तो फिर आगे ना माना जाए। वो किसी को कुछ देना चाहे तो कोई रोक के दिखाए फिर जरा। यमसस कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू वही यमसस कभी खैरिन वहु अला कुल्ली शैइन कदीर। वो तुम्हें कोई नुकसान देना चाहे कोई रोक नहीं सकता, वो तुम्हें कोई फायदा देना चाहे तो वो हर चीज पर कादिर है। तो जितना हमारा इसके ऊपर ईमान ज्यादा होगा, हम उतने मजबूत हो जाएंगे, हमें किसी का डर नहीं रहेगा। और जितना इस नाम के ऊपर ईमान कम होगा, इतना ही हम हर वक्त कभी इससे डरेंगे, कभी उससे, हाय ऐसे ना हो जाए, हाय हमारे हमें कोई फाका ना आ जाए, हाय कहीं बीमारी ना आ जाए, हाय फलां हमें नुकसान ना दे दे, हाय फलां मसला ना हो जाए। जबकि अल्लाह ताला की कुव्वत, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला की कुव्वत देखें, एक उसकी मखलूक है जिब्राइल अलैह सलाम, वो देखें इतने कुव्वत वाले हैं कि एक अपने पर के ऊपर पूरी बस्ती उठाई, लूत अलैह सलाम की जो बस्ती थी, कौमे लूत को उठाया और पटक के नीचे फेंका, सिर्फ एक पर पे। हालांकि देखा जाए पर जो होता है वो एक जो वीक चीज होती है परिंदों में, या इसमें देखें पर एक नाजुक सी चीज होती है, उनका पर भी कितना मजबूत है। उनकी कहा जाता है कि ये उनकी चीख होती है कि जिससे चिंगार से कौमे तबाह हो गई, किसी फरिश्ते की चीख थी या जिब्राइल अलैहि सलाम की चीख, एक चीख से ये हाल है। तो इंसान की क्या पावर है। और फिर सोचें, ये फरिश्ते जो हैं, इतना बड़ा फरिश्ता है जिब्राइल अलैहि सलाम, फरिश्तों में सबसे मुकर्रब फरिश्ते, लेकिन अल्लाह ताला के आगे वो ऐसे हो जाते जैसे कि एक बुसीदा कपड़ा होता है ना, जब अल्लाह ताला का हुक्म आता है ऐसे ही हो जाते हैं, जैसे मश्क एक होती है, लेदर बैग होता है जो बुसीदा हो गया, इतनी आजी। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाया करते थे, तो एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफी दिन नहीं आए, तो आपने फरमाया कि ऐ जिब्राइल तुम ज्यादा आया करो, इतने दिन बाद क्यों आए हो, ज्यादा आया करो तुम। जितना तुम आते हो उससे ज्यादा। तो फरमाया आगे से कि हमारा आना और हमारा जाना सब अल्लाह ताला की एजेंसी है ना। ये नबी जो सारे नबियों में सबसे टॉप पे है ना, उनके अंदर ताकत के फरिश्तों को जब चाहे बुला लिया करें, जब चाहे भेज दिया करें ना। फरिश्ते में इतनी ताकत के जब उसका दिल करे उतारते आ रहे हैं, जब दिल करे जाते हैं। नहीं, सुबहान अल्लाह, वो अल्लाह ताला कितनी कुव्वत वाला है कि इतना बड़ा फरिश्ता भी कहता है कि मैं अल्लाह ताला की इज्जत के बगैर तो नहीं आ सकता। अल्लाह अकबर। और हामिली ने अर्श फरिश्ते, उन फरिश्तों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अर्श को उठाने वाले, उसके कान की लौ से लेकर कंधे तक का फासला, सिर्फ ये देखें, ये हमारा सबसे शॉर्टेस्ट ये फासला है ना। हमारा बाजू भी लंबा होता है, हमारी टांगे भी लंबी होती हैं, हमारा बीच का धड़ भी लंबा होता है, लेकिन ये फासला सबसे छोटा फासला है। फरमाए ये फासला उनका कितना है, 700 साल की मसाफत तक कोई चलता रहे इतना फासला है ये कान की लौ से लेके सिर्फ कंधे तक का उसका। तो बाकी 500 साल तो एक आसमान से दूसरे का फासला है, उससे भी ज्यादा फासला उनका है। वो कितने बड़े फरिश्ते होंगे। अल्लाह ताला इन फरिश्तों को कंट्रोल करने वाला, इनको चलाने वाला, कि वो एक जरा सा भी ये फालूना मा युमरून, अल्लाह ताला कुराने पाक में फरमाता है वो वैसे ही करते हैं जैसे उनको हुक्म होता है, एक जरा सा भी इधर से उधर नहीं वो करते अल्लाह के हुक्म के अलावा। और फिर ये कायनात को चलाने वाला, इतनी मैसिव कायनात, इसमें इतने बड़े बड़े सितारे, सैयारे, मैंने आपको पहले बताया था बिलियंस सितारे हैं, वो कैसे उनको चला रहा है इस कायनात को पूरी। जाहिर है वो कुव्वत वाला है, इजा अरादा शैअन, तो जब वो किसी काम का इरादा करता है तो उसने क्या करना होता है, इन्नमा यकुलु लहु कुन फयकून, वो बस उसने कुन कहना है हो जा, वो हो जाता है, बस वो हो जाता है सिर्फ ये, यानी उसने सिर्फ इरादा ही करना होता है। अब ये कुन की हमें नहीं समझ आ सकती कि वो कैसे ये उसके कैसे ये होता है कि वो कह दे और वो काम हो जाता है। तो वो इतनी कुव्वत वाला है, जब हमें भी कुव्वत चाहिए हो ना तो हम उससे मांगे, अल्लाह मैं कमजोर हूं मुझे कुव्वत अता फरमा। किसी के मुकाबले में भी आप कहते हैं ना कि ये कोई आपके ऊपर जुल्म कर रहा हो कुछ है, तो आप कहते हैं अल्लाह मैं कमजोर हूं और तू अल कवी है, तू मुझे कुव्वत दे, क्योंकि अल्लाह ताला ही जिसको कुव्वत दे उसको कुव्वत मिल सकती है। इन यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम, इन यखज़ुलकुम फमनज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बादी, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम्हारे पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और वो तुम्हें छोड़ दे तो कौन है जो उसके अलावा तुम्हारी मदद करेगा। फिर सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ताला है ना वो तुम्हारी मदद करे तो कौन है जो तुम्हारे ऊपर गलबा पा सके, ना कोई बीमारी, ना कोई फिकरात, ना कोई ऐसी परेशानी, जो भी आपके मसाइल है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, रिस्क चाहिए, औलाद चाहिए, सेहत चाहिए, इज्जत चाहिए, कोई चीज भी आपको ये दे नहीं सकती सिवाय अल्लाह की जात के, क्योंकि अल कवी वो ही है ना। कोई बीमारी हम पे गलबा पा सकती है, ना जिल्लत हम तक पहुंच सकती है, ना कोई हमें गजन पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि कुव्वत वाला वो ही है। और इन आज के दौर के अंदर लोग पावर चाहते हैं ना, हर कोई पावर चाहता है, हर कोई चाहता है मैं पावर ग्रैब कर लूं, मैं वो कुर्सी पे मैं पहुंच जाऊं जो पावर रख होल्ड करती है। उसके लिए कितने झूठ बोलते हैं, कितने धोखे देते हैं, कितने लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं और बदनाम करते हैं, और कहते हैं बस ये मुझे वोट मिल जाए मैं इस कुर्सी पे पहुंच जाऊं, मैं पावर चाहते हैं। पावर की दौड़ है ना सारी, तो असल अल कवी तो अल्लाह ताला है जिसके पास सारी पावर है, उससे क्यों नहीं कहते। तो अल्लाह ताला है जो पावर देने वाला है किसी को, वो सोर्स है जिससे पावर मिलती है, और कोई ये ना सोचे कि वो अल्लाह ताला की पावर से बच सकता है। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू सबकू इन्नहुम ला युजिज़ून, काफिर ये ना समझे कि उन्होंने अल्लाह को हरा दिया, वो अल्लाह ताला को कभी हरा नहीं सकते, वो अल्लाह ताला को कभी आजिज़ नहीं कर सकते, तो वो अल्लाह ताला से कभी भाग नहीं सकते कि वो अल्लाह ताला से भाग के कहीं जाके छुप जाएं या उसकी पावर से, उसकी पकड़ से बच सके। अगर हम समझते हैं कि जिन्नों में ताकत है, जिन्नों से लोग डरते रहते हैं, जिन हमें ये ना कर ले, कोई नहीं, सूरज जिन में देखे, जिन खुद कहते हैं, हम समझते हैं कि अल्लाह ताला को कोई आजिज नहीं कर सकता, तो जिन क्या चीज है, फरिश्ते उसके आगे पर नहीं मार सकते। जब अल्लाह ताला का हुक्म उतरता तो सारे फरिश्ते सजदे में चले जाते हैं, वो और उनकी मिजाल नहीं होती कि वो सर उठाएं जब तक अल्लाह ताला का हुक्म ओवर नहीं हो जाता। जब अल्लाह ताला का हुक्म ओवर होता है, पूरा होता है, तो अपने सर उठाते हैं और कहते हैं क्या कहा गया, क्या हुक्म आया, और जो आया हक आया, जो अल्लाह ताला ने फरमाया हक फरमाया। और हमें ये कहा गया कि जब हमारे पास कोई नेमत हो तो हम अपनी नेमत के ऊपर कहा करें माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला, जो अल्लाह ताला ने चाहा, और ला कुव्वता इल्ला बिल्ला, कोई कुव्वत नहीं मेरी है मगर अल्लाह की है। कहफ, सूरह कहफ में बाग वालों का जब किस्सा आता है तो उसमें वो आदमी ने यही कहा था ना बाग वाले को कि तुमने ये क्यों नहीं कहा माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला। तो ये नहीं कि दूसरे की नेमत देख के, दूसरे की नेमत देख के तो आप उसको बरकत की दुआ दें, बारकल्लाहु फी कहें, अल्लाह ताला आपको इसमें बरकत दे, लेकिन अपने पास जो नेमत है तो उसके लिए कहें माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ठीक है। और वैसे भी हम ये जो कलमा है ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ये जो कलमा, इसमें भी तो ये बात है, कोई ताकत नहीं, कोई कुव्वत नहीं मगर अल्लाह ताला के पास है। तो उलमा कहते हैं कि जो आपको मसाइलों, परेशानियों, किसी से खौफ आपको आता है, कोई भी ऐसी चीज है, आप ये कलमा पढ़ना शुरू कर दें कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, आप देखेंगे अल्लाह ताला आपको उस परेशानी से निकाल देगा। आप इस कलमे को दोहराते रहें, इसका विर्द करें, अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे दरवाजे खोल देगा, आपकी जो मुश्किल है वो दूर हो जाएगी, और अल्लाह ताला आपको, अल्लाह ताला आपका हाथ थाम लेगा। तो ये कलमे में बहुत यानी ताकत है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। जब इब्ने कसीर में ये वाक्य आता है कि जब हजरत औफ अशजाई और रज़ील्लाह ताला उनके बेटे हजरत सालिम जब काफिर, उन्होंने उनको कैद कर लिया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहलवा भेजा कि उनसे कहें कि बकसरत ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ा करें। हम देखें कितनी एक मुश्किल में वो पास गए थे कि काफिरों ने कैद किया हुआ था। तो वो कहते हैं अचानक एक दिन बैठे बैठे मेरी बेड़ियां खुल गई, और वहां से ये भागे और उनके ऊंट भी साथ ले गए, और जब घर पे आए और दरवाजे पे खड़े होके आवाज दी तो बाप ने आवाज सुनी, कहते हैं अल्लाह की कसम ये तो सालिम है। माँ ने कहा वो कहाँ से आएगा, वो बेचारा तो कैद में मुसीबत झेल रहा है। जब गए दरवाजे पे जाके देखा तो सालिम रज़ील्लाह तआला सामने खड़े हैं और ऊंट भी साथ लाए हैं। तो ये इतना जबरदस्त कलिमा है कि कोई भी किसी किस्म का मसला हो, ये उसके लिए कोई ऐसी परेशानी हो, कोई आपको नुकसान पहुंचने का कहीं से अंदेशा हो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, अल्लाह ताला के पास हर ताकत है, वो किसी का मोहताज नहीं है, शदीद कुव्वत का मालिक है, वो ऐसी कुव्वत है कि जिसके आगे कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। और उसकी कुव्वत में ना वो परफेक्शन है, यानी हमारे पास कुव्वत होती है ना तो आज है, कल हम बीमार पड़े होते, या कल हमें बुढ़ापा आ जाएगा तो फिर हमारी क्या कुव्वत रहेगी। बड़े बड़े कवि लोग होते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं तो फिर बिल्कुल उनकी कुव्वत कुछ भी नहीं होती। अल्लाह ताला की कुव्वत एक जैसी है, ऐसे नहीं है कि कभी कम है कभी ज्यादा है, परफेक्ट है, थोड़ा सा फर्क भी नहीं उसमें पड़ता। तो हम उसको क्यों ना पुकारें फिर, और अपने आप के अंदर आजी दिखाएं। देखें इसमें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला में उलमा फरमाते हैं इतनी सारी चीजें हैं ना, इसमें आजी भी है, इसमें अल्लाह ताला से मदद मांगना भी है, इसमें अल्लाह के ऊपर भरोसा भी है कि तू ही तो है ना, तो जिस सारी ताकत कुव्वत तो तेरे पास है, मेरे पास तो है ही नहीं है अल्लाह। तो जो किसी से डरते हैं वो ये बात कहा करें। और आपकी जो भी कोई आपको अगर कभी कोई धमकी दे रहा है या कोई आपको डरा रहा है, तब भी यही कलिमात कहें, आपको खुद भी कुव्वत महसूस होगी क्योंकि आपके पीछे अल्लाह है। और कभी दूसरों से, दूसरी ताकतों से मरूब ना हो। हमारे यहाँ आज समझते हैं कि मुसलमान तो हाय मारे गए, ये बस इनको इस्लाम की वजह से ही ये पीछे रह गए हैं दुनिया में। बाज़ लोग आज ये भी कहना शुरू हो गए, अब बस वेस्ट से मरूब हैं बहुत ज़्यादा, इतने इम्प्रेस हैं, और हमें क्या मिला, जैसे कि इस्लाम से तो हमें कुछ मिला ही नहीं। हालांकि वो उस का कलमा पढ़ने वाले हैं जो अलकवी है, ये लोगों को पावरफुल समझते हैं कि वो सुपर पावर और वो पावर, और हम भी उनके जैसे बनेंगे तो हमें भी पावर मिल जाएगी। हालांकि इससे नहीं पावर मिलती, पावर तो वो जो अलकवी है वो पावर देगा तो पावर मिलेगी। और जब घर से भी निकले तो वो मसनून दुआ उसमें भी देखें यही है ना, आपने शायद कभी नोट ना किया, बिस्मिल्लाही तवक्कलतु अलल्लाही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। ये जब कलिमात कह दिए जाते हैं, फरिश्ता कहता है इसने हिदायत पा ली, इसकी हिफाजत हो गई और ये किफायत करके, तो शैतान भी फिर कहता है अपने साथियों से, अब ये इसको हम मतलब कुछ नहीं नुकसान दे सकते, ये तो हिदायत पा गया, गाइडेड है, प्रोटेक्टेड है, और इसके लिए किफायत हो गई, काफी है इसके लिए। तो आप किसी भी मसले में हैं, आप आज खुश हो जाएं कि आपका रब अलकवी है। कभी कभी इंसान उसके नाम अर रहमान और रहीम पढ़ के सुन के तो सोचता है कि जैसे हम दुनिया में सोचते हैं किसी को कि कोई नरम होगा, बड़ा शफकत करने वाला होगा, माँ की मोहब्बत को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे हम इन इंसानों में देखते हैं तो हम सोचते हैं इनके पास वहाँ पे कोई पावर है, बस ठीक है रहम है, जो रहम दिल है, जो नरम है, पावर उसके पास ज़्यादातर नहीं होती। जो हम दुनिया में जिनको पावरफुल देखते हैं वो तो बड़े गज़ब वाले होते हैं, बड़े सख्त होते हैं, और बड़ी वो तो अपनी पावर का इस्तेमाल ऐसे कर रहे होते हैं कि बेदरेग, और किसी का उनको कोई वो नहीं होता कि किसी के ऊपर जुल्म कर रहे हैं या किस तरह ज्यादती हो रही है। तो हम तो ये देखते हैं इसलिए हम ऐसा ही समझ के बैठे हैं, हालांकि अल्लाह ताला रहमान और रहीम है ना, जहाँ वहाँ अलकवी और मतीन भी है। उसको ऐसे ना समझो कि उसके पास को रहम है तो फिर अब पावर ना होगी, नहीं, वो तो सबसे ज्यादा कुव्वत वाला है। तो ये चीज़ हमें स्ट्रोंग करती है। और जब किसी को रिस्क भी चाहिए तो चूंकि अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि वो रज़ाक और ज़ुल कुव्वतिल मतीन है, तो हम भी कहें या रज़ाक ज़ुल कुव्वतिल मतीन और रुज़ुकनी, मुझे रिस्क अता फरमा। आज का जो जिक्र है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, ये वो प्यारा जिक्र है कि जो इस जिक्र को करेगा 100 दफा दिन में तो कयामत के दिन इससे बढ़ के कोई भी अमल लाने वाला नहीं होगा। और ये वो जिक्र है कि समंदर की झाग के बराबर भी अगर गुनाह हो तो वो माफ हो जाएंगे। अब मैं आपको एक नुस्खा सिर्फ इसका बताना चाहती हूँ कि बाज दफा लोगों के लिए 100 दफा पढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो क्या करें फिर? ऐसा कीजिए आप हर नमाज के साथ 20 20 दफा पढ़ लें, सारा दिन में 100 दफा हो जाएगा। तो ये सबसे आसान है, और 20 दफा पढ़ने में यकीन जाने कि 1 मिनट भी नहीं आपको लगेगा, इतना आसान है ये। तो ये आसान करके मैंने आपको बता दिया। आज आप दुआ जो करेंगे वो बड़ी प्यारी दुआ है, और वो ऐसी दुआ है कि हमें हमेशा ही मांगनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफियत फिद दुनिया वल आखिरा, ए अल्लाह मुझे आफियत अता फरमा दुनिया में भी और आखिरत में भी। आफियत क्या होती है? यानी वेल बींग, यानी मुझे हर तरह की मुश्किल से महफूज रखना, मुझे हर तरह की खैर पहुंचती रहे। किसी के बारे में आता है कि उन्होंने ये इरादा किया कि मैं कुरान हिफ्ज़ करूं, तो वो कहते हैं कि मैं ये तो दुआ करता था कि मैं कुरान हिफ्ज़ करूं, लेकिन कभी ये नहीं दुआ की थी कि आफियत के साथ हिफ्ज़ करूं। तो क्या हुआ कि उनको जेल कर दी गई, उनको कैद कर दिया गया, और जेल में उन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया। तो सुभान अल्लाह, हिफ्ज़ तो कर लिया लेकिन एक मुसीबत के साथ ना। तो इसलिए हमें हर चीज़ के अंदर ये कहना चाहिए, अल्लाह ताला ये मुझे नौकरी मसलन दे दे आफियत के साथ, या अल्लाह ताला मेरा ये काम ऐसा हो जाए आफियत के साथ। तो यानी आफियत मांगे हर एक दुआ के साथ भी ना, आफियत का ज़रूर सवाल करें, क्योंकि आप आफियत मांगेंगे तो जो सारे काम होंगे आपके, यानी मेरा ये सफ़र हो जाए आफियत के साथ, मेरा घर बन जाए आफियत के साथ, मुझे घर में रहना नसीब हो आफियत के साथ, हर चीज़ में आफियत मांगे, ठीक है? तो अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी आफियत अता फरमाए और आखरत में भी। बहुत छोटी सी दुआ है मगर बहुत जामे दुआ है। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।